कामय स्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति तीक्ष्णे राधे तं माम शरणं। अच्छा मुखे दिए दीते जाप दिए दीते श्री श्री बृहद भगवत आमृतम सप्तम अध्याय द्वितीय भाग सप्तम अध्याय। कृष्ण का ब्रज गोपियों के प्रति क्या भाव है इसको वो दिखला रहे हैं। गतकल्य हम इसके संबंध में बतलाया था मैंने। पहले कृष्ण अपने आप गोपियों से साक्षात रूप में बातचीत की और पीछे उन्होंने जो उद्धव को कहा था और उद्धव ने गोपियों के पास जाकर के उनके भावों को देखा और जो अपना संदेश दिया था उद्धव को उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहले ये समझना चाहिए ये सनातन गोस्वामी पाद किन के लिए ये सब रसायन का संचयन कर रहे हैं। कुछ उत्तम अधिकारियों के लिए, साधारण अधिकारी तो समझ ही नहीं पाएंगे। पहले साधक किसको कहते हैं पहले ये समझिए। हम लोग भक्ति के साधक अभी हैं कि नहीं हैं पहले इस चीज को समझिए। हम लोग क्या हैं? एक तरह से साधका आभास यदि कह दिया जाए तो कोई दोष नहीं, साधक आभास। अभी शुद्ध साधक नहीं है। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, किंतु अधिकांश साधक नहीं, साधक आभास कहे जा सकते हैं। We think that we are not all sadhak, pure sadhak. We may be called sadhakabhas. But we think that we are devotee. But actually, when you will think, you will come to conclusion that really we are not sadhak. जब कोई भक्त साधु संघ में गुरु की महिमा जानकर गुरु से नाम और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात में संबंध ज्ञान के साथ में भजन करने लगता है उस समय उसके अनर्थ रहेंगे, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति तक भी रहेंगे, किंतु वो साधन क्या करेगा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मज्ञानावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, इसका साधन करेगा तब साधक कहलाएगा। ऐसे नहीं, संबंध ज्ञान के साथ भाव भक्ति के लिए जब साधन करेगा तब वो साधक कहलाएगा। जो ये जानता ही नहीं है अन्याभिलाषिता शून्य का तात्पर्य, जानता ही नहीं है अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम और अनुकूल्य कृष्णानुशीलन किसको कहते हैं? कृष्ण के प्रीति के लिए कायिक वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार की चेष्टाएं और प्रतिकूल वेश्याओं में उनको दूर रखने की चेष्टा और यहाँ तक कि भाव भी उनके लिए हो, तब तो ये साधक है। उसमें उसकी कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टाएं कभी भी अपने लिए नहीं होगी, तब तो वो साधक की कोटि में आएगा और कृष्ण प्रीति के लिए सब कुछ करेगा। हो सकता है कि अनर्थ रहे, कोई हर्ज नहीं, तब तो वो साधक कहलाया। जब वो समझेगा कि भाव किसको कहते हैं और उस भाव को पाने के लिए साधन करेगा, तब तो साधक की कोटि में आएगा। अब ऐसे साधक लोग भी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी हैं। तीन प्रकार के साधक, उत्तम वाले भी अधिकारी हैं, वो साधन के ही, वो किस चीज के हैं? उत्तम वाले भाव की अभी हो सकती है, ये प्राप्ति कुछ हुई है, स्वरूप सिद्धि भी हुई है, प्रेम की सिद्धि के लिए वो लोग साधन करते हैं। इसलिए पहले हम लोग समझ बूझ करके जब साधन करेंगे तब तो साधक की कोटि में आएंगे। अभी उद्देश्य हमारा निश्चित नहीं है, संबंध ज्ञान भी नहीं है, अनर्थ भी भरे पड़े हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति लोग भाव के लिए साधन करेंगे। नित्य सिद्धस्य प्राकटंग हृदि साध्यता, नित्य सिद्ध जो भाव है अपने हृदय में, वो भाव प्रकट करने के लिए जब इंद्रियों के द्वारा किसी का उत्तमा भक्ति जो है उसका साधन करेंगे अपने अधिकार के अनुरूप, तब उन्हें साधक कहते हैं। ये साधक भी दो प्रकार के हैं, वैधि भक्ति के साधक और रागानुगा भक्ति के साधक। रागानुगा भक्ति के साधक जगत में बिरले हैं, बहुत बिरले हैं, वो अपने आप उनका साधन होता है जो कि रागानुगा है। उनको लोभ है, लोभ ही दो प्रकार का है, एक शुद्ध लोभ और एक लोभाभास। जगत में अभी जो हम देखते हैं लोभाभास है। बिल्ल मंगल को जब लोभ हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी और इस आंखों से कोई भी सौंदर्य नहीं देखेंगे, सौंदर्य देखेंगे भाव नेत्र से कृष्ण का, तब उनको साधक कोटि में लाया गया। इसलिए इन सबको विचार करके जो लोग इनको सुनेंगे, जिनको लोभ हुआ है भक्ति में, गोपियों जैसी हमको भक्ति चाहिए, सेवा कृष्ण की चाहिए, उनके लिए जिस समय में ऐसा लोग होगा उस समय में अपना सेव्य नहीं बनेगा जो दूसरी हमारी सेवा करे, सारी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करेगा और दूसरों से भी कराएगा। इसलिए यहां पर सनातन गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत से इन श्लोकों को उद्धार कर रहे हैं और कह रहे हैं, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितृन प्रतिमा वह गोपीनां मद्योगावधि मत्संदेशैर्विमोचय। कृष्ण गुरु जी के पाठशाला में पढ़कर उज्जैनी से भी लौट करके आए हैं और आते ही जमुना जी को देखा और उत्तर की दिशा में अपनी अट्टालिका पर, वसुदेव महाराज की अट्टालिका में चढ़ करके ऊपर देखा और भावों से गदगद हो गए, आंखों से आंसू झरने लग गए, कुछ विकल से हो गए। हमारे विरह में न जाने ब्रज की क्या अवस्था होगी, और पशु पक्षी बोलते नहीं, कोयल नहीं कुहकती, मोर नहीं नृत्य करते, गायें घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, तो पुरुषों की तो क्या दशा होगी। इसलिए ऊपर में अट्टालिका के ऊपर में चढ़कर कुछ व्यतीत होकर के, किसका विरह? गोपियों का विरह। पहले हमने कृष्ण के प्रति गोपियों का विरह का वर्णन किया सनातन गोस्वामी, अब कृष्ण के विरह का, कृष्ण का भी को भी विरह होता है। सब जितने भी जगत में भक्त हैं उनके लिए वो सोचते हैं, विशेष करके जो शरणागत भक्त हैं जो सचमुच में शरणागत है उनकी प्रार्थना भी सुनते हैं। यद्यपि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये प्रश्न किया, जब कृष्ण वृंदावन के विलास में ही तन्मय रहते हैं तो भक्तों की प्रार्थना कौन सुनता है? कहते हैं कि हाँ, विलास में लिप्त रहने पर भी अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से उनकी प्रार्थना को भी सुनते हैं, किसी भी भक्त को भूलते नहीं। वृंदावन के उनके रसिक और भावुक भक्त हैं, गोपियां हैं, किंतु और लोगों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, किसी की भी उपेक्षा नहीं करते ना? तो गोपियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, माता पिता के प्रति, भक्तों के प्रति कृष्ण की क्या भावना है, इन श्लोकों को मैं, यह पहले गोपियों के प्रति उन्होंने दिखलाई, अब ब्रजवासियों के प्रति विशेष करके फिर गोपियों के प्रति उद्धव को जो संदेश दे रहे हैं उसमें ये बतला रहे हैं चीज को। कृष्ण भी बड़े विरह में दुखी रहते हैं गोपियों, तो उस समय में उद्धव जी उनको खोजते खोजते आए और खोजते खोजते अट्टालिका पर पहुंचे और कृष्ण को विरह में व्यथित देखा। साथ ही साथ कृष्ण इनको देख करके और भी भाव में विभोर हो गए और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहने लगे, प्रिय उद्धव गच्छ ब्रजम, ब्रज में जल्दी से जल्दी तुम ब्रज में जाओ। हे सौम्य, सौम्य ने चारु दर्शन, बहुत ही उद्धव जी भी कृष्ण के समान ही सुंदर थे, कृष्ण के समान ही बहुत ही सुंदर थे। सोम माने होता है चंद्र, और चंद्र से सोम से सौम्य, चंद्र जैसे सुंदर दिखता है, सुशीतल होता है, वैसे ही इनका दर्शन है। इनको देखते ही भक्तों का हृदय मधुर और स्निग्ध हो जाता है, कृष्ण के समान इनका भाव भी वैसे है, इसलिए इनको सौम्य कहा। हे उद्धव, पितृ न, हमारे जो पिता हैं, प्रतिमा भाव, हमारे पिता हमारे वीर में बड़े दुखी हैं, हमारी मैया हमारे वीर में बड़ी दुखी हैं। कभी कभी ब्रज से संदेश आते हैं कि तुम हमारे यदि लड़के होते तो हमें छोड़कर के मथुरा में नहीं जाते। यशोदा जी इस प्रकार से खेद में किसी के हाथ से संदेश भेजती हैं और कृष्ण क्या कहते हैं, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलायरी। मैया तुम ऐसा मत कहो ना, तुम्हें मर जाऊंगा, कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं इसलिए वहां चला गया, ऐसा यदि कहोगी तो मैं मारा गया, इसलिए फिर ऐसा मत कहना, मैं जल्दी से तुम लोगों के मित्र वसुदेव और देवकी इनको सांत्वना दे करके, उनके सारे लड़के मारे गए हैं और बलदेव जी भी हम यदि नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे वहां, बलदेव जी की प्रतिज्ञा है यदि कृष्ण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारे बाबा तो वसुदेव जी ही, नंद ही हमारे पिता है, मैया हमारी यशोदा है, हमारे पिता ने तो बाल्यकाल में ही हमें छोड़ दिया, तो जो पालन पोषण करता है वो भी पिता है, तो इन्हीं से हमें लाड़ प्यार मिला, हम इन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए कृष्ण तुम यदि नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और यदि जबरदस्ती हमें रखा जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए बलदेव को यहां रखने के लिए कुछ दिन, जब पुत्रहीन देवकी और वसुदेव को कुछ संतना मिल जाए इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहां हूं, मैं जल्दी से आने वाला हूं। बस इसी आशा तंतु, तंतु मैंने क्या, पति सी तंतु, जैसे कमल की डंडे की तंतु होती है, उसी पर उनके प्राण टिके हुए हैं, कृष्ण ने यह कहा है जैसे मैं आऊंगा, इसीलिए बस इसी पर उनके आशा तंतु के ऊपर में उनके जीवन निर्भर हैं, इसलिए प्रतिमा बहो उनको धैर्य धारण कराओ, उन्हें सांत्वना दे आओ। चतुरता के साथ में हम जैसे उनको प्रणाम करते थे वैसे ही तुम भी साष्टांग प्रणाम करना, उनके चरणों को छूना और नह पित्रो, हमारे पिता। हमारे क्यों कहा? कृष्ण के पिता हैं न किसके पिता हैं? बलदेव जी भी उनको पिता मानते हैं। आदर सूचक में भी किसी को पिता के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। और उद्धव के लिए करें, तुम्हारे भी माता पिता कौन है? नंद बाबा यशोदा मैया है, इसलिए हमारे प्रतिम आवह। प्रतिम आवह, आव माने क्या कहते हैं? चतुरता के साथ, कुशलता के साथ में जैसे तैसे उनकी प्रति को उत्पन्न करो, उनको सांत्वना दो, उसको कहते हैं आवह। चतुरता माने क्या? हमारे पिता माता को समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है, हमारे बिना उनकी सांत्वना नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, मैं जब तक उनकी गोदी में नहीं बैठूंगा उनको सांत्वना नहीं हो सकती। तभी तुम भी उसी चतुरता से, उसी प्रकार से उनके चरण छूना, वैसे ही पिताजी कहना, वैसे ही प्रेम से उनके साथ में वार्तालाप करना, जैसे मैं उनके पास ही हूं, इस तरह से चतुरता से करना। कहने के बाद में बस अपने असल संदेश पर आए। गोपीनां मद वियोगावधि, माता पिताजी को हमारा वियोग का दुख है, वो सह रहे हैं कुछ कुछ। मैयांधी तो हो गई है किंतु मरी नहीं। पिताजी के भी ऐसी स्थिति है, हमारे वियोग में एकदम तड़प रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, दुबले पतले हो गए हैं, यशोदा जी के सामने नहीं आते। तुमने हमको, हमारे बेटे को सोने के आभूषणों पर बेच दिया, उसको नहीं लाया। इस डर से अपनी पत्नी के पास, यशोदा जी के पास में नहीं जाते। किंतु उन लोगों से भी बहुत अधिक वियोगावधि, उनको वियोग का दुख है, किंतु गोपियों को वियोग की अवधि। वियोग की अवधि माने क्या? अनुराग की सीमा को भी पार कर जाता है, अधिरूढ़ की भावना पर मोहन भाव धारण करता है। गोपियों को मोहन से भी अपीत बढ़ जाती है। श्रीमती राधिका जी मादन की स्थिति में आ जाती है। उस समय में चित्र जल्प और दूसरी प्रेम, ये सब उद्भास्पर इत्यादि बहुत से सब भाव होते हैं। वियोगावधि, यहां तक कि प्रलय भी स्थिति को पार कर जाती। प्रलय माने होता है मूर्छा, एकदम मूर्छित हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है। मत संदेश, उनसे चतुरता मत करना, खबरदार। उनको बतला देता हूं, पिताजी से चतुरता से व्यवहार कुछ कर सकते हो क्योंकि अवधि नहीं है, किंतु इनसे चतुरता मत करना। कोई भी बात चतुरता से उनको समझाने की चेष्टा मत करना, क्यों? उनका वियोग और बढ़ जाएगा, सह नहीं सकेंगी। मत संदेश ही, इनको तो हमारा संदेश जो तुमको दे रहे हैं जैसा का तैसा कह देना, बस और कुछ। हम तुमको ये संदेश दे रहे हैं, कृष्ण ने उनकी झोली में बहुत से संदेश दिए, जैसे संदेश की मिठाई होती है 10-20-25 एक किसी चीज में दे दिया। कृष्ण ने एक ही उपदेश संदेश नहीं दिए, बहुत प्रकार के संदेश। देखो पहले ये कहना, जब इसे भी उनको सांत्वना ना तो ये संदेश कहना, उसके बाद में ये कहना, फिर ये कहना, पर एक एक दूसरे से संदेश, गुढ़ गुढ़ से गुढ़तर गुढ़तम संदेश को उसमें दिया है। ऐसे ये संदेश हैं, कृष्ण ने एक भाव से कहा। उद्धव जी ने कृष्ण के जितने हृदय की जो संदेश है उसको समझा कि नहीं? कृष्ण जिस तरह से रो रहे हैं और रो करके अपने उस संदेश को गोपियों के लिए भेज रहे हैं, उद्धव जी सचमुच में उन भावों को वैसे ही उपलब्धि कर और गोपियों से बोले, संभव पर नहीं था। शब्दों को तो कहा, जैसे एक रोइए मत, कृष्ण ने जिस तरह से कहा, जिस भावना से, उनकी टोन में क्या स्वर छिपे थे, उसको वो नहीं कह सकते, रोइए मत कह सकते हैं। तो कृष्ण जिस भावना से कहा, उद्धव जी अपनी भावना से समझे, अपने अधिकार के अनुसार में समझे, और गोपियों ने समझा किस रूप में, उद्धव जो कहा उस रूप में नहीं। वो शब्द में जो अभिव्यंजित अर्थ था कौन छिपा हुआ था उसमें, एक ही प्रकार से नहीं बहुत प्रकार से समझा उन लोगों ने। कभी खींचती हैं, कभी मानती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी सोचते हैं कि अब हमारे प्रियतम आ रहे हैं, कई आ गए अभी आ रहे हैं, अब जीवन भर नहीं आएंगे, आशा भी उनकी छूट गई। एक एक श्लोकों से उद्धव समझ नहीं सके जो हमारे ये कहने का संदेश गोपियों को प्राप्त होकर उनके मन में कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं, उद्धव नहीं समझ सके। यदि समझ लेते तो वो वृंदावन से फिर लौट करके मथुरापुरी में नहीं जाते, समझ नहीं सके। इसलिए कृष्ण ने जो शब्द कहा बस उसी शब्दों को दोहराया, किंतु गोपियों ने उसका गुढ़ से गुढ़तम भाव समझा। अब सनातन गोस्वामी जी अपने टीका में बतला रहे हैं, एवं साक्षात एकेन, पहले कृष्ण साक्षात रूप में गोपियों से कहा, न पारे हम निर्बद्ध संयुजान सुसाधु कृत्यम विबुधा जुषा पिवा मा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संविश तद वह प्रति जात साधु। कीर्तन कर दे रहे क्यों ना सब मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, बोलो क्या है ये अरे लाइट नहीं है भागवत के में बतलाया गया। कृष्ण ने अपने मुख से गोपियों की प्रशंसा की, उनके मुख पर ही कि हमारा तुम्हारा यह मिलन है परम निर्मल है, वेद की स्मृति की और सब लौकिक रीतियों से सब प्रकार से ही ये निर्मल है, कहीं भी इसमें दाग नहीं है, इसमें परपति का कोई संबंध ही नहीं है, व्यभिचार का इसमें कोई गंध नहीं है, बल्कि संसार में सबसे उन्नत चीज है। इसलिए मैं तुम्हारा मैं चिरकाल के लिए ऋणी हूं, मैं कोई भी कुछ उपकार दे करके तुम्हारा प्रत्युपकार करके तुम्हारा इस ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता, इत्यादि कहा। अब ये पहले श्लोक में आए हमारे भक्तों के द्वारा उपकार, कल बतलाया था ना? कौन रूप मंजरी इत्यादि के द्वारा, अब उतना तो नहीं किंतु उद्धव जी के मुख से, अब उद्धव जी को उन्होंने कहा, एक होता है प्रत्यक्ष एक परोक्ष, गोपियां नहीं है, कौन है उद्धव है, और उधर से गोपियों की प्रशंसा करते हुए गोपियों के इन भावों को कि कितनी उन्नत है भाव ये और गोपियां कितनी उन्नत हैं ये बस। अच्छा, जो साक्षात रूप में कर रहे हैं और परोक्ष रूप में जो उद्धव को कर रहे हैं, दोनों में से कौन उन्नत है? परोक्ष वाला। इसमें उसके लिए कहें अरे तुम हमारी बड़ी प्यारी हो, इसमें कुछ कपटता हो सकती है, सबको कह सकते हैं, किंतु जो दूसरों के माध्यम से जो उन्नत भक्त है उनसे जो उनकी तारीफ जो कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ये हृदय के अंतिम भाव से वो कर रहे हैं। इसलिए परोक्ष वाला जो है और भी प्रमाणिक है। इसलिए पहले कृष्ण ने जो गोपियों से साक्षात रूप में कही, अब उसको अब उद्धव के द्वारा जो संदेश दिया था अब ये बतला रहे हैं। दाढ़ विशेष दृढ़ता के लिए अपने पहले ही वे जो गोपियों से कहा है उसी की ठीक अब दृढ़ता कर रहे हैं। अपने भक्तों से उनकी प्रशंसा करते हुए जो गोपियों का भाव कितना उन्नत और कितना निर्मल है, विश्व में ऐसा कहीं किसी भी साहित्य में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो गोपियों जैसा प्रेम भाव। इसी को इस श्लोक से आरंभ करके और 8 श्लोक बतलाएंगे, श्रीमद् भागवत के ही लेंगे, जो उद्धव को बतलाया था उसको यहाँ पर बतला रहे हैं। उसमें से गोपी का विषय असाधारण प्रसाद और अनुरूप व्यवहार संपादन निमित्त भगवान स्वयं ब्रज में गमन नहीं कर करके मथुरा से नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपने उद्धव को भेज रहे हैं, बलदेव जी को भेज रहे हैं, ये कृष्ण क्यों नहीं गए? वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? 2 अंगुल। कितना दूर है? 5 माइल या 2 अंगुल। एक दूसरे के पास ही हैं। भाकरौल मथुरा की सीमा और उधर से भाकरौल वृंदावन की सीमा दोनों एक रत्ती भर का भी थोड़ी सी दूर है, किंतु परमार्थिक दृष्टि से आसमान और जमीन का अंतर है, बहुत बड़ा भारी अंतर, भावना के दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर। इस भावना के अंतर को वही समझेगा जो ऐसा भजन परायण है, वो समझेगा। तो कृष्ण यहां से नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? गैया चराने के लिए तो कहां आ जाते थे, एकदम वृंदावन की सीमा थी, तो क्यों नहीं वृंदावन में ये जा सकते थे? गोपियों के पास में क्यों नहीं गए? दूसरी बात, यदि नहीं गए तो कभी कभी आने जाने में क्या फर्क पड़ता था? कभी कभी जाते फिर चले आते। अच्छा, तो आकर के फिर राके नहीं गए, दूसरों से संदेश भेजवाने की क्या जरूरत है? खुद आकर के संदेश देकर के उनको सांत्वना देकर के चले जाते। ये सब प्रश्न है जो साधारण आदमियों के लिए नहीं, ये भजन राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए है। तब यही समझिए कि दंतवक्र जी, पहले तो जरासंध जी ने आक्रमण कर रखा था, यदि वो जान जाए जो कृष्ण के पिता नंद हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर कोई किला नहीं, कोई कुछ नहीं, सैनिक नहीं, कुछ दिन उन्हें मार करके इनको बर्बाद कर देगा, इसलिए नहीं आ रहे। दूसरी बात, कालजवन और बड़े बड़े असुर लोग हैं, इनका भी अभी वध करना है। वसुदेव जी यदि वहां पर हैं और अक्रूर ये महाराज उग्रसेन और कृष्ण ना है तो क्या होगा? एक दिन में दुष्ट कर देगा, इसलिए वहां से नहीं छोड़ रहे। किंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारण हैं, वो है प्रेम का। यदि कृष्ण ब्रज में आते हैं तो गोपियों का दर लाख गुना और अधिक बढ़ जाएगा जो मथुरा में है। क्या कहा, क्या समझा? अभी कृष्ण मथुरा में हैं तो उनकी छिपी हुई आग है, विरह की आग। यदि मथुरा से वो चले जाते हैं वृंदावन में एक दिन के लिए भी तो उनकी विरहाग्नि कैसी होगी? संभाल नहीं लेगी, एकदम प्रदीप्त होकर के जल उठेगी, धप धप कर जलेगी। अधिक दिन जाने के लिए जितनी अधिक दिन रहेंगे उतने ही जलेगी। क्यों? यदि आग में कुछ देने के लिए लकड़ी या कोई चीज नहीं है तो आग अपने आप शांत रहेगी। यदि आग के लिए कुछ ईंधन हो तो क्या होगा? ईंधन देने से वो बढ़ेगी। तो कृष्ण ईंधन स्वरूप अभी हो रहे हैं, उनको देखते ही विरह की आग और धधक उठेगी। ये प्रेम सरोवर में कृष्ण ने दिखलाया। उस समय में राधा जी उनके पास में हैं और विराजनी में एकदम तड़पने लगी, मूर्छित हो गई कृष्ण की गोदी में कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इसलिए कृष्ण ने देखा कि हम ऐसे नहीं सांत्वना दे सकते हैं, ना काठ लकड़ी रहेगी, ईंधन नहीं रहेगा और अपने आप वो प्रशमित रहेगा, उसमें विरह में ही हमारा दर्शन करके बड़ी खुश रहेंगी, कभी खाएंगी पिएंगी श्रृंगार और हम रहने से और उनकी विरह व्यथा बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए यदि किसी का लड़का है वही कहीं चला जाए